नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय
श्रीमद्भागवत दशम स्कंद अध्याय आठ श्लोक संख्या 46।
श्री राजो वाच नंद किम अकरोद ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदय यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनं हरिः।
मैं एक एक शब्द इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आज सब शब्द अलग अलग ही है, एक भी जुड़ा नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट श्लोक चालू किया है।
श्री राजोवाच नंद किम करोद ब्रह्मन् श्रेय एव महोदय यशोदा च महाभागा स्तनम हरिः। श्रीराजोवाच नंद किम अकरोद ब्रह्मन् श्रेय एव महोदय यशोदा च महाभागा स्तनम हरिः।
Thank you.
यूनिवर्स और कोई शरीर एनी बॉडी श्रीराजो वाच कोई बोल रहा था ना श्रीराजो उवाच महाराज परीक्षित ने और आगे पूछा नंद महाराज नंद ने किम क्या अकरोत् किया ब्राह्मण हे विद्वान ब्राह्मण श्रेय पुण्य कर्म तपस्या एवं जिस तरह उन्होंने प्रकट किया महाउदयम जिससे उन्हें सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हुई यशोदा माता यशोदा च भी महाभागा अत्यंत भाग्यशालिनी पपौ पिया यस्यः जिनका स्तनम स्तन का दूध हरिः भगवान ने अनुवाद कंपाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की श्री प्रभुपाद तात्पर्य की माता यशोदा ने परम सौभाग्य को माता यशोदा के परम सौभाग्य को सुनकर महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा हे विद्वान ब्राह्मण भगवान द्वारा माता यशोदा का स्तन पान किया गया उन्होंने तथा नंद महाराज ने भूतकाल में कौन से पुण्य कर्म किए जिनसे उन्हें ऐसी प्रेममयी सिद्धि प्राप्त हुई। तात्पर्य भगवद गीता 7:16 कहा गया चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन सुकृति अर्थात पुण्य कर्म के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आ सकता। भगवान के पास चार प्रकार के पुण्यात्मा पहुंचते हैं आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञान। किंतु यहाँ हम देखते हैं कि नंद महाराज तथा यशोदा सबसे बढ़कर थे इसलिए परीक्षित महाराज ने पूछा उन्होंने पूर्व जन्म में किस तरह के पुण्य कर्म किए थे जिसके कारण उन्हें ऐसी सिद्धि अवस्था प्राप्त हो सके। यद्यपि नंद महाराज तथा यशोदा को कृष्ण ने माता पिता के रूप में स्वीकार किया जाता है फिर भी माता यशोदा कृष्ण के पिता नंद महाराज से अधिक भाग्यशालिनी है क्योंकि नंद महाराज कभी कभी कृष्ण से वियुक्त होते थे जबकि कृष्ण की माता यशोदा क्षण भर के लिए भी कृष्ण से विलग नहीं हुई। कृष्ण के शिशुकाल से बाल्यकाल तथा बाल्यकाल से युवावस्था तक माता यशोदा कृष्ण की संगति में रही। जब कृष्ण बड़े हो गए थे तब भी वे वृंदावन जाते थे और माता यशोदा की गोद में बैठा करते थे। अतः माता यशोदा के भाग्य की तुलना नहीं की जा सकती इसलिए परीक्षित महाराज ने सहज में पूछा यशोदा च महाभागा। सुंदर तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी का। श्री राजोवाच महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते करते महाराज परीक्षित के 7 दिन की अवधि का ये 5वां दिवस प्रारंभ हुआ है। संतों का ऐसा मत है कि 4थे दिन के अंत तक श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को कृष्ण जन्म की कथा श्रवण किया। 4थे कृष्ण जन्मनी, तो 4थे दिन के अंत में कृष्ण जन्म तक की कथा हुई और बाकी 10वें स्कंद की जो लीला है ये 5वें दिन के प्रातः काल से कृष्ण लीला प्रारंभ हुआ है। पांच दिन तक महाराज परीक्षित कुछ भी अन्न और जल ग्रहण नहीं किए हैं और कृष्ण कथा का प्रश्न भगवान के विषय में श्रवण करने की अभिलाषा उनकी उत्कंठा जागृत हो रही है। शब्द आया है श्री राजो वाच, श्री राजा, श्री का अर्थ होता है सुंदर, शोभायमान। भगवान वेदव्यास देव लिखते हैं 5 दिन जय जय सीताधर गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। 5 दिन तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किए हैं महाराज परीक्षित, परंतु कृष्ण कथा से इतने प्रसन्न हैं कि उनका सौंदर्य और बढ़ गया है। श्री, श्री माने सौंदर्य, जो आंतरिक प्रसन्नता है, इतनी प्रसन्नता बढ़ी है कि 5 दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करने के बाद भी महाराज परीक्षित परम प्रसन्न हैं और उनके मुखमंडल से, चेहरे से बिल्कुल प्रसन्नता की रेखा झलक रही है। श्री राजोवाच, हम लोग एक दिन एकादशी वो भी 2-4 बार फलाहार करके करते हैं, फिर भी चेहरा और होंठ सूख जाता है। इसलिए श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत भैया सतीश कीर्तन। भगवत कथा के रसिक श्रोताओं में आचार्य है महाराज परीक्षित, कितनी उत्कंठा है। जीवन का गिन करके 2 दिन और शेष जीवन में भागवत कथा, भगवान की लीला कथा श्रवण करने की उत्कंठा इतनी है। प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे हैं, सौंदर्य बढ़ा और राजा का अर्थ भी यही होता है। इसको कहते हैं, राजा का अर्थ क्या होता है, सुंदर। राजते विराजते इति राजा, जो बहुत सुंदर हो, राजता हो, विराजता हो, जो बहुत सुंदर राजता हो, देखने में जिसकी शोभा होती हो उसको राजा कहते हैं। तो वर्तमान में आप देखिए महाराज परीक्षित कोई राजा नहीं, अपने पुत्र जनमेजय को राज्य पात, घर द्वार, व्यवस्था, मंत्री, कोष सब छोड़ करके आए हैं और एक मिनट भी उनको राज्य की चिंता करने की फुर्सत नहीं, न तो इच्छा। एक बार छोड़ा तो छोड़ ही दिया। जब बिल्कुल राजा नहीं है फिर भी इनको यहाँ पर राजा कहा जा रहा है, श्री राजे हुआ है। क्या राज्य है अभी? गंगा जी का तट है, बट वृक्ष के नीचे सुखदेव गोस्वामी के मुख से कथा सुन रहे हैं, तो कोई राज्य नहीं है फिर भी राजा है। राजते भगवान महाराज परीक्षित जो भगवान कृष्ण के दिए हुए राज्य का शासन करते थे भगवान की प्रसन्नता के लिए, उस समय भी राजा थे, क्योंकि परीक्षित का राज्य कोई सामान्य राज्य नहीं था। महाराज परीक्षित के राज्य में भागवत में लिखा है ठीक राम राज्य जैसी व्यवस्था थी, जैसा राम राज्य का वर्णन है, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, कोई द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, चोरी नहीं, हिंसा नहीं, सब लोग बिल्कुल आनंद मग्न है, ऐसी ऐसा ही राज्य परीक्षित महाराज। क्योंकि नाम परीक्षित का था लेकिन ये पूरा राज्य कृष्ण राज्य था। महाभारत युद्ध में पांडवों को विजय दिलाकर भगवान ने वो राज्य दिया। भागवत में लिखा है कितना सुंदर राज्य था, घर घर में केवल मृदंग करताल और कीर्तन होता था। पांडवों का विशेष रूप से पांडवों का भगवान कृष्ण के साथ कितनी आत्मीयता है इसको लोग गाते थे। और महाराज परीक्षित क्या करते थे, बोले जिस जिस घर में जहां जहां कीर्तन होता था उस घर में इतना प्रचुर धन देते थे कि उस भजन करने वाले को कमाने और खाने की चिंता नहीं। राज्य भी इतना सुंदर था, जैसे बिना मौसम का ये बरसात हो रहा है ना, परीक्षित महाराज के राज्य में ये बादल की हिम्मत नहीं थी कि आकर के वर्षा कर। कामम बवर्ष पर्जन्यम, भागवत में लिखा है कामम का अर्थ होता है जनता की इच्छा के अनुसार ये पर्जन्य बादल बवर्ष वर्षा करते थे। कह दिया कि हमारे इस खेत में केवल बरसना है तो उस खेत के बाउंड्री से बाहर नहीं बरस सकता था, और इतना ही पानी चाहिए तो उतना ही पानी बरस सकता था। सर्व काम दुघा महिम लिखा है कामम वर्ष पर्जन्यम सर्व काम दुघा महिम। और पृथ्वी कैसी थी, बोले खेती करने की जरूरत नहीं थी, एग्रीकल्चर नहीं, कोई हल चलाना और पानी और सिंचाई और फर्टिलाइजर और क्या सब कुछ जरूरत नहीं। पृथ्वी को आदेश दिया जाता था इतना क्विंटल बासमती का चावल चाहिए और पृथ्वी बासमती का चावल ही देती, इतना दाल चाहिए तो दाल, समुद्र से को आदेश दिया जाता था इतना रत्न चाहिए मोती हीरे जवाहरात तो निकाल कर दे देता, इतना सुंदर राज्य। और बहुत लंबा समय नहीं हुआ, अभी लगभग 5000 वर्ष भगवान के जाने के बाद परीक्षित महाराज राजा हुए। ऐसे महाराज परीक्षित दशम स्कंद की लीला श्रवण किए, उसमें बार बार ये शब्द आ रहा था, माता यशोदा ने कृष्ण को स्तन पिलाया। नंद बाबा के पुत्र के रूप में भगवान आए हैं। अभी माता यशोदा ने कृष्ण को डांटा, विश्वरूप देखा, बाद में वैष्णवी माया योग माया के प्रभाव से स्तन पिलाया, कृष्ण को दुलारने लगी, पुचकारने लगी। कितना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा, बोले बड़े बड़े योगिंद्र दुर्गम गति, बड़े बड़े योगी नहीं, योगियों में जो श्रेष्ठ हैं भगवान शिव हैं, नारद जी हैं, सुख सनकादिक हैं, इतने महान लोग जिनके स्वरूप का ध्यान भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे प्रभु को गोद में बैठाकर स्तन पिलाने का सुख ले रहे हैं। योगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि, बड़े बड़े योगियों के द्वारा, योगेश्वरों के द्वारा जिनकी गति दुर्गम है, ऐसे भगवान को गोद में लेना, दूध पिलाना, उनके मुख मंडल को देखना, सहलाना और लालन और पालन करना। नंद महाराज के सौभाग्य का वर्णन है। नंद किम अकरोत्, क्या किया नंद महाराज? ब्रह्मन, ब्रह्मन का अर्थ होता है वेद के विद्वान या सर्वज्ञ, तीनों काल के दृष्टा, आप भूत भविष्य वर्तमान है। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानग आख्यातान्य अपि अधिकानि धर्मशास्त्राणि जानत। आपको समस्त धर्मशास्त्रों का ज्ञान है, वेद का, इतिहास का ज्ञान है, इसलिए आप भगवान की लीला को ठीक ठीक बता सकते हैं, आप कहिए। ऐसा तो जो ठीक ठीक जो ब्राह्मण होगा, प्रभुपाद जी यहाँ ब्राह्मण भी अनुवाद करते हैं, और ब्राह्मण का अर्थ होता है वेद का विद्वान, वेद पाठात भवे विप्रह, ब्रह्म जानाति ब्रह्म, है ना? जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात द्विज उच्यते, वेद पाठात भवेत विप्रो, ब्रह्म जानाति ब्रह्म। भगवान को जो ठीक ठीक जान गया तत्व से, एवं यो वेति तत्वतः, उससे पूछा जा रहा है सुखदेव गोस्वामी से, आप जानते हैं कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया नंद बाबा ने? प्रभुपाद जी का कलम बोलता है, क्योंकि बिना पुण्य कर्म के, सुकृति के, तो कोई भी व्यक्ति भगवान के पास नहीं जा सकता। क्या सुकृति? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चार प्रकार के, गीता में भगवान कहते हैं चार प्रकार के सुकृति मेरे शरण में आते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां। और ठीक इसके आगे ही ये भी कहते हैं कि नमाम दुष्कृतिनो, चार प्रकार के लोग हमारे शरण में नहीं आते, वो दुष्कृति होते हैं। प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञानम आश्रम भावमा, ये चार नहीं आते हैं और चार आते हैं। तो सुकृतिशाली होते हैं, वो आते हैं, लेकिन इन चारों सुकृतिशालियों से ऊपर नंद महाराज हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि आर्त नहीं है और जिज्ञासा भी नहीं है, अर्थार्थी भी नहीं है, बहुत ज्ञानी भी नहीं। तो कौन है? बोले भगवान के नित्य धाम के नित्य माता पिता है नंद महाराज। भगवान का धाम नित्य है, भगवान के माता पिता नित्य हैं, और नित्य पुत्र हैं भगवान। भगवान के साथ महाराज जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं, कहते हैं कि भगवान के साथ कोई भी संबंध स्थापित करोगे तो वो नित्य होता है। दुनिया में आपका पुत्र है, बहुत प्रिय है, आप उसे दूध पिलाओगे, तेल लगाओगे, पालन पोषण करोगे, कब तक? जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता। विवाह होते ही पुत्र, अब आप उसको स्तन नहीं पिला सकते हैं, वो एक किसी का पति हो जाता है, तब तक फिर किसी का बाप हो जाता है, और तब तक माँ चली जाती है, या कभी कभी पुत्र चले जाते हैं। तो संसार का कोई भी संबंध नित्य नहीं है, लेकिन कोई भी संबंध भगवान के साथ स्थापित किया जाए तो वो नित्य संबंध होता है। नित्य का अर्थ क्या होता है? अनादि काल से, कब से वो संबंध चालू हुआ, वो है और आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। 5000 वर्ष पूर्व भगवान यशोदा जी के पुत्र थे, तो आज भी हैं और आगे भी हमेशा पुत्र ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि कभी बड़े होकर के फिर बदल जाएंगे, नित्य पुत्र है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि दो प्रकार के जीव होते हैं, एक नित्य बद्ध और एक नित्य मुक्त। तो भगवान के जितने भी पार्षद हैं, माता पिता है, ये नित्य मुक्त हैं, संसार के बंधन के नहीं है। तो नंद महाराज का सौभाग्य है, जगत का बाप किसी को अपना बाप बनाकर, पिता बनाकर के पुत्र बनने के लिए तैयार है, और नंद महाराज ने उस पुत्र का आनंद भी लिया, साथ में खिलाते थे, पिता को सुख मिलता है। गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा आनंद पुत्र प्राप्त। महाराज कहते हैं कि यदि गृहस्थ जीवन में पुत्र न हो तो गृहस्थ जीवन नरक के समान होता है, पुत्र हो या पुत्री जो भी। देखा जाता है कि पति और पत्नी अलग अलग हो गए, लेकिन जब कोई एक भी पुत्र हो जाए तो महाराज जी कहते हैं जैसे दो ईंटों को बीच में जोड़ने के लिए सीमेंट होता है ना, ऐसे दोनों को जोड़ करके रखता है, सीमेंट से दो ईंट को जोड़ते हैं। अब वो चाहे भी पिता पत्नी या पत्नी की अलग हो जाए तो नहीं हो सकता है, बीच में बिल्कुल टाइट सीमेंट का काम वो पुत्र करता है, माँ को भी जोड़ता है, पुत्र को भी जोड़ता है ना। अनुभव है ब्रह्मचारियों को नहीं, गृहस्थों को अनुभव है इसका। पुत्र प्राप्ति ये संसार का एक सुख है, तो संसार के पुत्र प्राप्त हो जाए तो इतना सुख होता है, भगवान ही जिसके पुत्र बने। तो नंद महाराज को बहुत सुख हुआ, साथ में खिलाना पिलाना, खिलने की व्यवस्था करना, कभी कभी सेवा कराना। माता पिता चाहते हैं कि बेटा हमारा अच्छा हो, सेवा करे। कभी कभी नंद बाबा कहते थे बेटा श्याम सुंदर कन्हैया वहां से मेरा खड़ाऊ लेकर के आओ, खड़ाऊ समझते ना, तो लड्डू गोपाल जी, छोटे गोपाल जी बड़ी मुश्किल से एक एक खड़ाऊ को उठा करके सिर पर रख करके, और इस तरह से ये सुख, और भगवान को भी सुख आता है। योग माया का वर्णन था, योग माया का अर्थ होता है ऐसी माया जो भगवान को भी प्रभावित कर दे, उसको योग माया। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, तो ऐसी माया जो भगवान को याद भुला दे कि मैं भगवान, अब उस समय उनको याद हो जाए मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का ईश्वर हूँ, पालक हूँ, जगन्नाथ हूँ, परब्रह्म हूँ, तो वो खड़ाऊ ढोए न, उनको ढोने में आनंद ही नहीं, मजा नहीं आएगा, इसलिए भगवान भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, उसका नाम योग माया। जो भगवान पर और उनके पार्षदों पर प्रभाव करे, प्रभावित करे, वो योग माया। लेकिन वो योग माया भगवान की शक्ति है और उससे भगवान को सुख मिलता है। तो नंद महाराज बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं प्रभुपाद जी का, जिनके पुत्र के रूप में भगवान आए। कुंती महारानी भी इसी क्रम से प्रार्थना किया है, प्रणाम दिया है, कृष्णाय, हे कृष्ण, किसको प्रणाम, कृष्ण को प्रणाम। तब कहती हैं कि हमारे भाई, कुंती महारानी कहती हैं कि हमारे भाई नंद वसुदेव जी बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके पुत्र के रूप में भगवान आए। तब कहती हैं वासुदेवाय, कृष्णाय, तब कहती हैं कि भले पुत्र के रूप में कहलाए, कहा गया कि वसुदेव जी के पुत्र हैं, लेकिन वसुदेव जी के साथ कितना समय तक रहे, वसुदेव से अधिक भाग्यशालिनी तो मेरी भाभी है। कौन, देवकी, जिनके गर्भ में 9 महीने तक ठाकुर जी रहे, जिनके भीतर, हृदय के भीतर, इसलिए देवकी नंदनाय। तब आगे कुंती महारानी विचार करती है, अरे देवकी से भी अधिक भाग्यशाली तो नंद महाराज हैं, जिनके आंगन में बहुत साल तक ठाकुर जी खेले, इनके यहाँ तो जन्म लिए और जन्म लेते ही भाग गए गोकुल। तो देवकी और वसुदेव से अधिक भाग्यशाली कौन है? नंद मां। सब कहती हैं नंद गोप कुमार आय, बोले नंद बाबा से भी अधिक भाग्यशाली तो जसोदा है, जिन्होंने गायों को गोविंद, गोपों को, ग्वालों को, गोपी जनों को, समस्त ब्रजवासियों को आनंद दे वो गोविंद, ऐसे गोविंद को बोलिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हमारे यहाँ तो गोविंदाय नमो नमः का दूसरा अर्थ भी होता है, जानते हैं ना, जब किसी को कुछ हो गया तो आदमी कहता है गोविंदाय, ये सांकेतिक शब्द हो गया है, नहीं पता आपको, उस भक्त का तो गोविंदाय नमो नमः हो गया, उस आदमी का ऐसा हरे कृष्ण हो गया, और ब्रजवासी लोग कहते हैं अरे उसका तो राधे राधे हो गया, राधे राधे। यशोदा श्रेय एव महा उदयम, इस प्रकार से महाश्रेय का उदय हुआ जिसके जीवन में, नंद महाराज के जीवन में, नंद महाराज के पुत्र के रूप में भगवान आए और उन्होंने वात्सल्य सुख प्रदान किया, तो नंद की मह करो, क्या किया नंद महाराज। और महाभागा च, च का अर्थ होता है और, महाभागा यशोदा किम अकरो, महाभाग्यशालिनी यशोदा जी ने क्या किया, जिनके हृदय के दूध को भगवान ने पिया, एक दिन नहीं बहुत लंबे समय तक, जिनके स्तन से ठाकुर जी के मुखारविंद का स्पर्श हुआ, जिनके हृदय के रस को भगवान ने पिया, पपौ जस्या, जस्या स्तनम, जिसके स्तन के दूध को हरि परम मनोहर परम सुंदर भगवान ने रोज रोज दिन भर बार बार जिन पान किया, अपने हृदय से लगाया, दूध पिलाया, तो माता यशोदा महाभाग्यशालिनी होगी, उन्होंने क्या किया ये प्रश्न। ये प्रश्न क्यों करते हैं महाराज परीक्षित, क्योंकि इसके पीछे बार बार माता यशोदा के दूध पिलाने की कथा सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं। आइए बैठे बैठे हम दो तीन जगह थोड़ा मार्क किए हैं, पेज को तो मोड़ दिए हैं, लेकिन मिल जाए तो अच्छा है। आप सब लीला जानते हैं, 7 दिन के थे, उसी समय एक राक्षसी आई थी ब्रज में, उसका नाम पूतना, क्या नाम
पूतना,
पूतान बालकान नयति इति पूतना, श्रीधर स्वामी ने कहा है जो पवित्र, पूतान माने पवित्र, बच्चों को बालकान नयति माने उठा ले जाती थी माँ के गोद से, उसका नाम पूतना, और ले जाकर क्या करती थी, गला दबाती थी, बड़ी खतरनाक तरीके से खाती थी। उसका परिचय देते हुए सुखदेव जी कहते हैं पूतना लोक बालग्नि, संसार के बच्चों को मारने वाली थी, राक्षसी थी, और बच्चों को कैसे मारती थी, बोले जैसे आपने देखा होगा ना गन्ना पेरते हैं, देखा 2 लोहे का गोला होता है उसके बीच में गन्ना डालते हैं, और जूस निकल जाता है। ऐसे ही दो पातों के बीच में उन बच्चों को जूस बनाकर पीते हैं। रुधिर आसन, रुधिर आसना, खून ही जिसका भोजन था, ऐसे बिल्कुल इतनी खतरनाक। और गई ब्रज में बहुत सुंदर रूप बना करके गई थी, मारने के लिए गई थी, फिर भी भगवान ने उसको माता की गति प्रदान की। गई थी और जब भगवान दूध पीने लगे तो मुंचाल मिति प्रभात सिंधी। जब भगवान पहले तो बहुत विचार किए, लीला की बहुत बड़ी कथा है, तो जाकर कहने लगे, यशोदा कितने निष्ठुर हो, बच्चा पलने में भूखा है और तुम इधर उधर काम कर रही हो। माता को भी भ्रम हो गया कि ये तो वास्तव में कितना स्नेह करने वाली, और तुरंत कंचुकी को हटाया और स्तन निकाल करके जिसमें हलाहल कूट काल कूट जहर भरा लगा था उसको पिलाया, और पिलाते ही भगवान तो आंख बंद ही कर लिए थे। शिव जी को बुलाया था, मैं कहा था कि आया था ब्रज में कि दूध पीऊंगा, आते आते ही जहर को भोग लगाना पड़ा। तो मन ही मन भगवान आंख बंद किए और उन्होंने कहा कि हे शंकर जी, ये जहर और विष पीना आपको अभ्यास है, ये आप पी जाइए, हम तो दूध पिएंगे। तो भगवान शिव को बुलाया, भगवान ने आवाहन किया और सरोसम, भागवत में लिखा है रोष के साथ, तो रोष और तोष भगवान शिव का नाम, तुरंत प्रसन्न होते हैं इसलिए आशुतोष हैं, और तुरंत नाराज भी होते हैं इसलिए आशुतोष हैं। सरोसम रोष के साथ मन शंकर जी के साथ में पीने लगे, और मुंचाल जब पीने लगे, जहर पी गए और खून पी गए, अब धीरे धीरे प्राण वायु को पीने लगे तो बहुत कष्ट हुआ, और अपनी पूरी ताकत से छुड़ाने लगी। तो भगवान ने कह दिया कि हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार पकड़ लिए तो अब ये हमारा स्वभाव, और मेरा क्या दोष है, मथुरा से तुम पिलाने आई हो तो हमारा काम है पीना, हम थोड़े तुम्हारे पास पीने के लिए गए। तो पीने लगे और पीते ही वो अपने स्वरूप में हो गई, 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा शरीर हो गया, और हवाई जहाज की तरह छोटे से बालक को लेकर के आकाश में उड़ गई, और भगवान ने उसके प्राण को पी करके धरती पर गिराया। माता यशोदा और सभी गोपी इस प्रकार देखते देखते इतना बड़ा हादसा हो गया। आनंद बाबा तो उस दिन मथुरा में गए थे कंस को वार्षिक कर देना। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार गोपीजन माता यशोदा उस पूतना के पहाड़ जैसे शरीर पर, 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा था तो ऊंचा भी होगा ना, लेकिन ब्रजवासियों ने ये भय नहीं किया कि हमको क्या होगा, पूतना क्या करेगी, शायद सांस चल रहा है कि जी रहा है, कृष्ण कैसे भी सुरक्षित हो, ऊपर पहुंच गई और लेकर नीचे आई। तो यहाँ पर लिखा है इति प्रणय वृद्धा भी गोपी भी कृत रक्षणम, भगवान की रक्षा भगवान के नाम से किया, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनश्च गोरज सार्वकम, गाय के गोबर से गाय के मूत्र से स्नान कराया, और इसके बाद पायित्वा स्थनम माता, माता यशोदा ने स्तनपान कराया। स्तनपान स्तन देते ही बच्चा यदि दूध पीने लगे तो ऐसी मान्यता है कि उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं। बच्चे को जब कष्ट होता है तो क्या क्या करता है, दूध पीना बंद कर देता। तो माता यशोदा ने सोचा दूध पीने लगे इसका मतलब कि उसका कोई डर लग रहा था कि इतनी बड़ी राक्षसी थी, एक दो नाखून मारा होगा, छपटाई होगी, तो हमारे कृष्ण को कुछ चोट आया होगा, कहीं कट गया होगा नाखून से, लेकिन जैसे ही दूध पीने लगे तो सबको विश्वास हो गया कि नहीं ठीक, कृष्ण को कोई कष्ट नहीं। ये कथा सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। एक बार उनके जन्म महोत्सव था और सकट के नीचे उनको सुला दिया गया। बहुत बड़ा उत्सव था जन्म महोत्सव और सारे ब्रजवासी अपना अपना उपायन लेकर के आए थे और भीड़ थी, सब लोग नाचते गाते बजाते, उत्सव का माहौल था। इतना सामान और गिफ्ट आइटम आया कि घर भर गया। माता यशोदा ने सोचा अब लाला को कहाँ सुलाऊं, तो दूध दही से भरा हुआ एक गाड़ी था, बैल गाड़ी, उसके नीचे सुला दी। और कुछ बच्चों को छोड़ दिया कि देखते रहना, थोड़ा अब हम थोड़ा अतिथियों की सेवा में व्यस्त हो रहे हैं। अब भगवान ने सोचा बताओ वैकुंठ से आया, गोलोक से आया कि माता के गोद में रहूंगा, दूध पीऊंगा, और इस घर में रहने का कोई मेरा स्थान नहीं है, इतनी बेइज्जती। तो रोने लगे, रुदन, क्यों रोने लगे, स्पनार थे, माता यशोदा के स्तन के अर्थी थे, इसलिए रोने लगे। और रोते रोते बच्चे जैसे पांव ऊपर तरफ उछालते हैं ना, ऐसे ही थोड़ा सा गाड़ी से टच हुआ, उस गाड़ी के भीतर एक बहुत बड़ा असुर था और भगवान ने ऐसे ही मारा और पूरा ट्रक पलट गया। भगवान ने देखा ट्रक पर लदा क्या था, एक राक्षस उसमें था और बहुत सारा रस, गोरस, दूध, दही था। हरीश्वरी जी कहते हैं भगवान ने सोचा संसार का सबसे बड़ा रस तो मैं हूं, हमसे बड़ा रस और कुछ है नहीं, और ये हमारे ऊपर कहां से ये दूसरा रस आ गया, गोरस। तो भगवान ने चरण से मारा और धड़ाम से ट्रक उला। और दूसरी बात, कोई कृष्ण की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, तो भगवान ने कहा मेरा ही उत्सव हो रहा है और हमारा इतना अपमान हो रहा है, तो ट्रक उलाट दिया। सब लोग कहने लगे बाप रे बाप, इतना बड़ा बच्चा बच गया ट्रक का, इतना बड़ा ट्रक उलट गया। और इस तरह से सबका ध्यान कृष्ण पर चला गया। माता यशोदा ने पूछा अरे ये घटना कैसे हुई, तो कुछ बच्चे वहां थे, बोले मैया हम तो यहीं थे, देख रहे थे, खेल रहा था। बोले अच्छा, तो फिर? बोले खेलते खेलते इसने पांव उठाया। मैया यशोदा ने कहा चुप, एक महीना के बच्चे के पांव मारने से ट्रक उलट जाएगा? मूर्ख कहेंगे चुप रहो, बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, लेकिन चूंकि बच्चे थे तब उनकी बात कौन सुने, कोई सुनने के लिए तैयार। तो भगवान स्तन पीने के लिए इस प्रकार से तत्पर हुए। सुखदेव गोस्वामी बार बार माता यशोदा के भाग्य की सराहना करते हैं। रुदंतम सुतमादाय यशोदा ग्रह संकिता कृत्वा स्वस्तयनम विप्रई, ब्राह्मणों से स्वस्तयन कराकर सुक्तई, पुरुष सुक्त आदि के द्वारा बहुत सुंदर स्वस्ति वाचन कराया, और स्तनम अपाय, इस प्रकार से अपने स्तन को पिलाने लगी। इस प्रकार से जगह जगह पर स्तन पिलाने का जो सुख है, माँ को एक बहुत सुख मिलता है। आजकल की माताएं तो नहीं कहना चाहिए, पूछना से भी खतरनाक है। वो अपना स्तन अपने बच्चे को इसलिए नहीं पिलाते हैं कि हमारा जो ब्यूटी है, हमारा जो सौंदर्य है वो समाप्त, और क्या पिलाती है? बोतल। क्या पिलाती है? बचपन से ही बोतल पीता है, जवानी में भी बोतल पीता है और बुढ़ापे में भी बोतल पीता है। सही बात है, बचपन में बोतल का अभ्यास कराया और जवानी में बोतल पिया और बुढ़ापे में डॉक्टर के यहाँ जाकर बोतल, क्योंकि माँ के दूध में एक सहज स्नेह है, एक सहज स्वाद है। आज सब लोग स्तनपान सप्ताह कराते हैं, अंत में लोग कहते हैं कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम। महाराज जी कहते हैं पूतना बहुत खतरनाक थी, दूसरे के बच्चों को मारती थी, अपने बच्चों को नहीं मारती थी, लेकिन आजकल ये ऐसी खतरनाक पूतना हुई है अपने बच्चे को पैसा देकर के मार देती। डॉक्टर के पास जाती है, पैसा देती है, गर्भपात कराती है। इस प्रकार से माता यशोदा ने स्तनपान कराया। पपौ जस्या स्तनम हरि, भगवान ने जिनके स्तन का पान किया भगवान पी रहे। कंपटीशन हो जाता है, स्नेह के कारण माता का दूध कम नहीं होता था और भगवान माँ यशोदा जैसे स्नेहमयी ममतामयी माँ के हृदय के रस को दूध को पीने में थकते नहीं थे और दूध भी कम नहीं होता था। पीने वाले और पेय में और पेयक में दोनों में कंपटीशन। इसलिए महाभागा क्या किया, इसका उत्तर अगले सत्संग में, अगले कथा में आगे जो इस मंच से बैठेंगे सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर देते हैं। इस प्रकार से द्रोण और धरा नाम दोनों को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, फिर भगवान के माता और पिता के रूप में जब जब भगवान का अवतार होता है सब सब आते हैं और इस तरह का सौभाग्य समय सूचक यंत्र विराम सूचना दे रहा है, यहीं पर विराम कर।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
राम। कोई जिज्ञासा? एक ही प्रश्न हो, दो दो आ रहे हैं। नहीं सुनाई दे रहा है तो बुढ़ापे कब जी आगे आकर कहिए थोड़ा सा। कम नहीं होता ये
यशोदा माता का।
मैं आजकल की माताओं की बात कर रहा हूँ, पूरी बात आप सुन नहीं पाए थे प्रभु जी। मैं ये कहा कि आजकल की ऐसी खतरनाक माताएं, माँ अपने बच्चे का सबसे प्रिय होती है, सुहृद होती है, परंतु आजकल की माताएं ऐसा सोचती हैं। ये कहा था ना मैं, ये नहीं कहा था कि दूध पिलाने से सौंदर्य खत्म होता। जी मैं कहा था कि गलत है, खतरनाक है। कृष्ण का नाम उसका कृष्ण को कृष्ण का नाम अमृत है, कृष्ण का नाम आनंद है, असली में कृष्ण शब्द का अर्थ है, कृष्ण का अर्थ है कृषि भूवाचकम के, ये कृष्ण का अर्थ। क्री मने कृष मने कृषि, कृषि जानते हैं ना, खेती जो उत्पन्न होता है उसको कृषि कहते हैं। और ऋण का अर्थ होता है आनंद, जैसे खेतों से फसल उत्पन्न होता है उसको कृषि कहते हैं, उसी तरह कृष्ण से क्या प्रकट होता है, आनंद प्रकट होता है। इसीलिए कृष्ण शब्द का अर्थ है कृषि भूवाचकम गेयम मडाच निवृत्ति वाचक, तो दोनों के द्वय विग्रह संयोगात, दोनों शब्दों के संयोग से कृष्ण इति, ये कृष्ण का अर्थ है कि जिनसे निरंतर अनादि काल से केवल आनंद ही आनंद प्रकट हो उनको कृष्ण का। और अमृत इसलिए है कि लेने में मीठा लगता है, अमृत पीने में मीठा लगता है, तो कृष्ण नाम लेने में मीठा लगता है। राधा रानी चैतन्य चैतामृत में चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में कहते हैं, नो जाने जनिता कियत भी अमृत ही कृष्ण की वर्ण द्वयी, हे कृष्ण पता नहीं आपने ये क्रीस और हण इन दो शब्द में कितना अमृत भर दिया है, नो जाने जनिता कियत भी कितना अमृत ही कृष्णे की वर्ण द्वयी, इस दो वर्ण में आपने कितना अमृत भरा है आज तक इसकी महिमा। तो ये अमृत भी है परंतु कृष्ण शब्द का अर्थ है जिससे केवल आनंद ही आनंद स्फुटित, जैसे भगवान सूर्य है, सूर्य से पता नहीं कितने लंबे समय अनादि काल से प्रकाश 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 निकल रहा है, आज भी निकल रहा है आगे भी निकलता रहेगा, उसी तरह से भगवान से अनंत आनंद ही निकलता है, इसलिए उनका नाम कृष्ण। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।